तेजस्वितुं ओजस्वितुं तेजस्वितुं प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम, यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
तेरह जुलाई चौदह जुलाई पंद्रह नाइनटीन सेवेंटी सेवन ये तीन दिन अमेरिका में टोटल ब्लैकआउट हुआ था। 15, 13, 14, 15 रोशनी खो गई थी, इसे कहा गया है द ग्रेट ब्लैकआउट। इन तीन दिनों में न्यूयॉर्क में रोशनी नहीं थी, पर इन तीन दिनों में ऐसा कुछ हो गया जो लोगों ने सोचा ही नहीं। क्या हुआ हो? लूटपाट, चोरी, डाके, ऐसा कुछ हो गया जो सोचा ही नहीं। एक पादरी 17 जुलाई को किब्राइल सेंताक्रूज नाम का अपने चर्च सेंट बारबरा बुशविक शहर में खड़ा होकर बाहर देख रहा है और वो कहता है वी आर विदाउट गॉड नाउ, हम बिना भगवान के हो गए। ऐसी लूटपाट, ऐसी तबाही मची, लोगों ने ऐसे ऐसे कृत्य किए जो सोच नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है आग लगी, 1037 फायर्स, 3776 लोगों को अरेस्ट किया गया, $300 million का नुकसान हुआ, कितना दिनों में? 3 दिन। और 3 दिनों में क्या हुआ, केवल बिजली खो गई थी। चीना झपटी, जंगल राज, अत्याय हुई, न पुलिस का कोई वश, न कानून का कोई वश, दफ्तर बंद, दुकानें बंद, सब कुछ ठप। जैसे सारी सभ्यता बिजली पर खड़ी थी और बिजली खो गई। द टोटल ब्लैकआउट ऑफ 1977 न्यूयॉर्क सिटी। हमारी सभ्यता बिजली पर खड़ी है, पर जैसे एक प्रकार से ये त्रासदी हुई तो मनुष्य के भीतर छिपा हुआ राक्षस प्रकट हुआ। कहां से आया ये सब, कहां से ये चोर उत्पन्न हुए, इतने लोग कैसे पकड़े गए? अंदर कितनी वासनाएं हैं, कितना द्वंद है और कितनी हिंसात्मक भावनाएं हैं जो दबी पड़ी है, छिपी बैठी है। और जैसे ही अंधेरा हुआ, अंधेरे में शास्त्रों में क्या लिखा है, निशाचरों की शक्ति कब बढ़ जाती है? रात में। इसलिए राक्षस कब आक्रमण करते हैं? रात को। राम और रावण के युद्ध के समय जब जब राक्षसों ने आक्रमण किया, नए नए राक्षस जब आते थे तो कहां आक्रमण करते थे, कब आक्रमण करते थे? रात के समय, क्योंकि रात्रि में निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, इसीलिए उन्हें निशाचर कहा जाता है। वो रात के समय घूमते हैं, दिन में इतने शक्तिशाली नहीं है। असुर, राक्षस, दैत्य कब आक्रमण करते हैं? रात की तारीकी में, घटाटोप अंधकार में। तो बिजली खो गई और ये परिणाम निकला। पशुता बाहर निकली, क्रूरता, दानव, हैवानियत, कितने घर लूट लिए गए, आर्सनी, फायर, कत्ल हुए, त्याय हुई, सब कुछ हुआ। और ये वही लोग हैं जो दिन भर में इतने सभ्य दिखाई देते हैं, सूट बूट पहन के घूम रहे। ये घटना भारत की नहीं है, भारत के किसी गांव की नहीं है, ना ही भारत के किसी शहर की है। ये उस देश की है जो इस संसार का सबसे सभ्य देश माना जाता है, जहां पर नौकरानी भी कार लेकर आती है। ये उस देश की घटना है। द डेवलप्ड कंट्री, हम तो डेवलपिंग है, सबसे शिक्षित, सबसे समृद्ध, द मोस्ट प्रॉस्परस, उस देश में यह हुआ है। तो अंधकार में व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और अभी इस समय चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, और सोचो कोई अंधकार में भी है और साथ साथ उस वो प्यासा भी है, दो चीजें एक साथ, पानी ही नहीं है, प्यास और अंधकार एक साथ, तो क्या हालत होगी? तो आज बाबा ने क्या कहा, 1 मार्च की मुरली है, 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, रहने के लिए जगह नहीं है, यहां वहां ठहराए होटल में गेस्ट को, VIPs को, और अब बच्चे जा रहे हैं। रौनक मधुबन की जा रही है, श्रृंगार मधुबन का जा रहा है, जाने की इच्छा नहीं है किसी को, पर तुमको जाना होगा, क्योंकि तुम ज्ञान की गंगाएं हो, ज्ञान जल पहुंचाना है, क्योंकि पावर हाउस हो तुम, लाइट कनेक्शंस फैलाने हैं, जैसे कोई गांव होता है और जहां बिजली ना हो और जहां पानी ना हो तो सरकार क्या करती है, बिजली और पानी की पूर्ति करती है, डिमांड एंड सप्लाई। उसी तरह इस जगत में ज्ञान का अभाव है और प्रकाश का अभाव है, ये सारा जगत अंधकार में डूबा हुआ है, और प्रकाश कौन लाएगा? केवल तुम ज्ञान जल केवल तुम्हारे पास है और किसी के भी पास नहीं है। तो ऐसे अंधकार में समाज को ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से नहलाना है। किस कदर सीधा साफ, सीधा सरल साफ यह रास्ता देखो। न किसी शाख का साया है, न दीवार की टेक, न किसी आग की आहट, न किसी चेहरे का शोर, न कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई। दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चंद कदमों के निशा हाँ, कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ देर, फकत चंद कदम और फिर टूट के गिरते हैं। यह कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो, तन्हा अकेले। इस संसार में हर आत्मा कैसी, हर व्यक्ति कैसा है, तन्हा है, अकेला है, दुखी है। साथ आए जो यहां, कोई नहीं, कोई नहीं। किस कदर सीधा सरल साफ है यह रास्ता देखो। भारत में एक दूसरे से बात तो करते हैं, चलते हुए मिलते हैं, तो विदेश में किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से। अपने काम से जाते हैं, अपने काम से आते हैं, बैठकर बातें नहीं करते। और सुनाओ, थोड़ी तो राहत मिलती है इससे, भले व्यर्थ है परंतु फिर भी थोड़ा बोझ कम हो जाता है। जो बोझ है गृहस्थी का, वो थोड़ा तो कम हो जाता है। हल्के फुल्के जोक करके व्यक्ति को थोड़ा हल्का तो लगता है। विदेश में जोक ही नहीं करते। आधा से ज्यादा अमेरिका तो नींद से, नींद की गोलियां खाकर सोता है। इतना गहरा डिप्रेशन है, इतनी गहरी तन्हाई है, अकेलापन है, अकेले पन का अंधकार है, तमस का अंधकार है। इतनी भौतिकता, इतने सुख है, इतने सुख है, पर वो सुख का करे क्या। सुख से उब उत्पन्न हुई है, कुछ और चाहिए। ये सब देख लिया, बचपन से ही विकारी जीवन चालू हो जाता है। सारे भोग देख लिए, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए तो अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे। कल की अव्यक्त वाणी में भी था ना, संडे की मेडिटेशन की तो और स्पिरिचुअलिटी की ओर वो आकर्षित हो। लास्ट लाइन मुरली की, संडे की मुरली। तो आज करना क्या है? सबसे पहला तो कौन सा काम करना है, जो जो एरिया जहां बिजली नहीं पहुंची है, स्थूल बिजली नहीं, ज्ञान की बिजली, अपने शहर का एक नक्शा बनाना है ऐसे। और उसमें ठीक, अपने शहर का एक नक्शा, आप जहां रहते उस एरिया का, और उसमें ये दिखाओ कि जहां जहां ज्ञान जहां तक पहुंचा है वो लाइट, और जहां नहीं पहुंचा है वो डार्क। जैसे कोई एक शहर है, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद या मुंबई, कौन सी एरियाज है जहां पर अभी तक हम पहुंचे नहीं है? कौन सा तबका है समाज का, रिक्शा वाले, मजदूर, कामगार, कौन लोग है जहां तक हम नहीं पहुंचे? ट्रक वाले, ड्राइवर, कंपाउंडर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल। बाबा ने कहा कोई भी ना छूटे, सारे आने चाहिए, गरीब से लेकर तो साहूकार, काला हो या गोरा हो, सब सब रंग के, सब रूप के, सब धर्म के, कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वो कौन सी एरिया से, कौन सा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी का कॉलेज, कौन सी कंपनी, आईटी कंपनी, अपना ही शहर जो है उसका एक नक्शा बनाओ। सबसे मेन तो वही है, जहां रहते हैं, जहां रहते हैं। बाबा ने अव्यक्त संदेश में कहा ना, 69 के 13 अव्यक्त संदेश है, उसमें संदेश नंबर 6 नदी, पहला ही संदेश नदी 6 में तो है ही, नदी बह रही है, बाकी लोग आ रहे हैं अपनी प्यास बुझा रहे, पर आबू वाले प्यासे के प्यासे, और फिर नदी ने अचानक रास्ता मोड़ दिया, फिर बाद में पछता रहे। दरवाजा है, दो उदाहरण, एक ये और दूसरा दरवाजे का, गेटवे टू पैराडाइज लिखा हुआ है, फिर आए, टिकट खत्म हो गई, दरवाजा बंद, फिर पछताएंगे। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री, घर की मुर्गी दाल बराबर। जीसस क्राइस्ट अचानक से प्रकट हो गया, कहां पर? छोटा बच्चा, उन्हीं लोगों के बीच में जन्म लिया था, 13 वर्ष का था, और फिर गायब हो गया, और फिर आ गया एकदम कुछ सालों बाद। और जब आया तब तो वो एक मसीहा, धर्म इतना बड़ा, लोगों ने कहा ये कैसा, इसको तो हमने अपने सामने देखा है खेलते हुए, और ये कैसे आ गया ईश्वर पुत्र बनकर। तुम लोगों को हमने देखा है और तुम कहते हो हमने भगवान को जान लिया। तो ये काम करना है, एक नक्शा, अनलिट एरियाज, ऐसे कौन से सेक्शंस हैं कि जहां तक हम नहीं पहुंचे वहां सेवा करनी है जाकर। विधि क्या है? कैलेंडर लो, इंटरनेट पे जाओ और डेज निकालो, जनवरी मास में कौन कौन से डेज है, फरवरी में कौन कौन से डेज है, सेवा केंद्र पर सेवा नहीं है, सेवा नहीं है चिल्लाते रहते, डेज निकालो, लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, डेज की लिस्ट बनाओ एक, और उस डे के अनुसार सेंटर पर क्या करो, प्रोग्राम। कोई भी डे, कुछ ना कुछ तो डे होगा ही हर दिन, कुछ तो कुछ होगा ही, अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, ये दिवस, वो दिवस। तो कोई ना कोई डे, उस डे में कोई ब्लड डोनेशन कैंप, कोई ट्री प्लांट। ये तो मुरली 83 की है तब बाबा कह रहे, उसके बाद तो ये सब कुछ जो कहा है उससे कई गुना अधिक हो गया है, पर उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये मुरली प्रासंगिक नहीं है। इट इज स्टिल रेलेवेंट, क्योंकि अभी भी कितने सेक्शंस है संसार के, सोसाइटी के, समाज के, पत्रकार, कई सारे सेक्शंस है जो जिनको पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ चल रहा है यहाँ। तो ये सबसे पहला काम है आज का। दूसरा है स्टोरी टेलिंग टेक्निक, तीसरा है कोलेज ऑफ प्रोफेशनल, सारे प्रोफेशनल्स, ऐसा एक चित्र बनाओ कि उनको अनुभव हो ये बाबा हमारा है, जैसे तुम कहते हो मेरा बाबा, उनको अनुभव, ये ज्ञान हमारा आधार है, बाबा हमारे लिए आया हुआ है। ये दो शब्द है मुरली में, सर्व का बाप सर्व के लिए। क्या शब्द है मुरली में? सर्व का बाप सर्व के लिए, भगवान आया है सबके लिए, ये ज्ञान सभी के लिए, सबको लगे कि इस ज्ञान से मुझे फायदा होगा, हो रहा है, तभी वो आएंगे। क्यों आएंगे अन्यथा? अगर तुम कहोगे कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, पहले ही भाग जाएंगे, वैराग वैराग वैराग, और भाग जाएंगे। हाँ, कोई स्टूडेंट है, अगर उसकी उसके स्किल्स बढ़ रहा है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आएगा वो। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है और उसे कुछ ऐसी स्किल्स सिखाई जा रही है जिससे उसका फायदा हो रहा है, तो ही वो आएगा, उसका प्रमोशन हो रहा है, तो वो आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? जिसे कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई भाषा या कुछ, तो इंग्लिश, वो किसी ने बोला ना पत्नी पूछती है, वो इंग्लिश सीख रही है, कि फिनिश और कंप्लीट में क्या अंतर है? पति क्या कहता है? जब से मैं तुम्हारे जीवन में आया तुम कंप्लीट हो गई, और जब से तुम मेरे जीवन में आए, मैं फिनिश हो गया। तो एक सारे प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स तक पहुंचे नहीं पहुंचे, सारे स्टूडेंट्स, अलग अलग कॉलेजेस के, स्कूल्स के स्टूडेंट्स, मॉरल एजुकेशन, कुछ तो उनको सिखाया जाए। कौन सी जनरेशन है ये? इस जनरेशन को क्या कहा जाता है? जनरेशन एक्स, बच्चों वाली जनरेशन कौन सी है? जेड, ये जेड, जहां बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में मोबाइल, एआई टूल्स। माताओं को पता नहीं मोबाइल कैसे चलाना, बच्चों को पता है। ये जनरेशन है, आते ही उसके उसको सब कुछ उसके हाथ में है। जेड जनरेशन इसको कहा गया है, बच्चों की 2025 को। 2025 में जो बच्चे पैदा होंगे या हुए अभी एक मास में अल्फा जनरेशन, जेड जनरेशन, अल्फा है शायद। तो जो बच्चे इसमें पैदा हुए उनके हाथ में मोबाइल है, सारे ऐप है, सारे टूल्स है, इंटरनेट है, गूगल है क्यों जाएंगे स्कूल बताओ? हाँ, तो आज एक और काम करना है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक। सभी स्थिर हो जाएंगे, आंखें बंद। ये जो टेक्निक है मुरली स्टडी की, पूरी मुरली को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरी मुरली को क्या कर दिया है? एक स्टोरी, एक विजुअलाइजेशन, जो कि देखना है कि ऐसा है तो आपको ऐसी एक स्टोरी बनानी है पूरी मुरली से। अभी जैसे हम सुना रहे हैं उसमें सारी मुरली की सारी पॉइंट्स आ गई है। सभी स्थिर, आंखें बंद और विजुलाइज करेंगे, आंखों के सामने देखेंगे, कलर भरेंगे, आवाज सुनेंगे और स्पष्ट देखने का अभ्यास करेंगे। एक बार बाप दादा सूक्ष्म वतन में बैठकर पृथ्वी का दृश्य देख रहे थे। आंखों के सामने लाओ ये दृश्य, सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा ऊपर बैठकर धरती का दृश्य देख रहे, एरियल व्यू, विहंगम दृष्टि। उन्होंने देखा कि कुछ स्थान तेज रोशनी से नहाए हुए है, जबकि कुछ स्थान अंधकार में डूबे हुए। अंधकार में भटकती आत्माएं तड़प रही है, व्याकुल है। फिर बाबा ने प्यार से बच्चों की ओर देखा और कहा, तुम ही हो इस आध्यात्मिक पावर हाउस के कनेक्शन, जो हर आत्मा तक यह लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओगे। जैसे पावर स्टेशन से बिजली के कनेक्शन दूर दूर तक पहुंचते हैं, वैसे ही तुम्हारी सेवा के प्रयासों से आत्माओं तक यह रोशनी और ज्ञान पहुंचेगी। तो ऊपर बाबा ने नीचे दृष्टि डाली और फिर बाजू में बैठे बच्चों को कहा कि तुम कौन हो? लाइट पावर हाउस हो। बाप दादा ने समझाए, जैसे किसी गांव में बिजली और पानी पहुंचने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही जब आत्माओं को यह आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल मिलेगा तो वो कौड़ी से हीरा बनेंगे, उनका जीवन नई चमक और वैल्यू से भर जाएगा। तुम्हारा काम है उन आत्माओं तक यह कनेक्शन देना जो अभी तक अंधकार में है। बाप दादा ने मधुबन को एक पावर हाउस बनाया, जहां से आत्माएं शक्ति लेकर विश्व में इसे फैलाने जा रही है। जैसे बाबा ने कहा, सरकार भी हर गांव तक बिजली और पानी पहुंचाने का प्रयास करती है, वैसे ही तुम्हें हर आत्मा तक यह ज्ञान और लाइट पहुंचाना है। हर धर्म, हर प्रोफेशन, हर वर्ग के लोग इस ज्ञान को समझे, अपनाए और कहे, ये हमारे लिए, बाबा हमारे लिए आया है, यह ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। बाबा ने बच्चों को दिशा दी, हर सेवा केंद्र पर इस वर्ष यह दिखाओ कि सभी प्रकार के पेशे, प्रोफेशन और वर्क के लोग एकत्र हो, जैसे गुलदस्ता में वैरायटी फूल होते हैं। मजदूर से लेकर उद्योगपति तक, गांव से लेकर शहरवासी, हर प्रकार की आत्मा को इस ज्ञान का अनुभव हो। सेवा के माध्यम से सभी यह अनुभव करें कि ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए। बाप दादा ने आगे और एक दृश्य दिखाया। एक समय आएगा जब दूर दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि से आत्माएं स्वयं खींचकर तुम्हारे पास आएगी। वे महसूस करेंगी कि कोई दिव्य शक्ति उन्हें बुला रही है। तुम्हारी यह सेवा रूपी शक्ति दुनिया को तीव्र गति से श्रेष्ठ ठिकाने तक पहुंचाएंगी। अंत में बाबा ने कहा, इस वर्ष हर स्थान पर नई आत्माओं को जोड़ो। जो भी प्रभावित हुई आत्माएं, उनसे भी सेवा कराओ, ताकि वे पुण्य कमाएं और श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रेरित हो। जैसे स्थूल धन का दान फल देते हो, वैसे ज्ञान धन का दान उन्हें नए राज्य में आने का पात्र बनाएगा। बाबा ने बच्चों को यह संदेश देकर विदा किया कि सभी का उद्देश्य होना चाहिए इस ज्ञान की लाइट और पानी से पूरे विश्व को रोशन करे, हर आत्मा को क्षमा पर खींचने वाले बने। तब दुनिया तुम्हें ईश्वरीय संदेशवाहक के रूप में पहचानेगी। अच्छा, मधुबन निवासियों और प्यारे बच्चों को बाप दादा का अनंत प्यार, याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति। तो ये क्या कर दिया है, एक स्टोरी, पूरी मुरली की जितनी पॉइंट्स है, कहाँ से मुरली चालू हुई, बच्चों की रौनक, बच्चों को देखा, फिर संसार की हालत देखा, फिर तुम्हें पावर हाउस बनना है, ज्ञान गंगा बनना है, और फिर क्या करना है और कैसे करना है, और फिर क्या होगा भविष्य में, संकल्पों से सेवा होगी, फरिश्ते नजर आएंगे सबको, रौनक और जो VIPs है और जो सब तबके के लोगों को यहाँ बुलाओ, सबको लाओ, और लास्ट में मधुबन निवासी। तो ये पूरी मुरली को क्या बना दिया है, एक ही स्टोरी में पूरी मुरली आ जाए, ऐसी एक स्टोरी बनानी। तो तीन काम है, एक तो चित्र कोलाज, अर्थात बहुत सारे चित्र जोड़कर एक चित्र, या डॉक्टर का चित्र जोड़ दो या इंजीनियर का, और बीच में आत्मा या परमात्मा। तो एक कोलाज, सर्व का बाप सर्व के लिए, एक ऐसी अपने शहर की लिस्ट जहां वो देखना है कौन सा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन सा एरिया है जो छूटा हुआ है और वहां तक पहुंचना है, और ये स्टोरी टेलिंग टेक्निक। तो ये तीन काम है, किसका कौन सी, अल्फा जनरेशन कहते हैं ना, अल्फा।
ओम शांति। तो मुरली सभी पढ़ के आते हैं एक दिन पहले, और आज भाई जी ने भी सब क्लियर कर दिया है। तो आज की एक्टिविटी का नाम है कीवर्ड पजल। पजल तो बचपन में सभी ने खेला ही होगा, तो हम आप सभी को ही देंगे। पहले इसको सुन लेंगे। जैसे ये है कीवर्ड पजल है, ये इसमें मुरली के कीवर्ड्स हैं जो अभी डिस्कस किया है मुरली भाई जी ने भी, और पढ़ा भी होगा मुरली। तो आप पिक्चर से भी ये पता कर सकते हैं कि क्या कीवर्ड्स है इसमें, और इसको क्या गोल लगाना है जो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना देख लीजिए कितना होगा, या तो दो दो पेयर बना दीजिए अगर नहीं पहुंचता है तो। नहीं नहीं बाबा की मुरली के कीवर्ड से हूँ, आज की मुरली से है ना।
हम दोनों का
एक हाँ लिख दीजिए। सुखदेव भाई हाँ हाँ राउंड करना है। ठीक है, राउंड गोल लगाना है जो आपको मिल जाता है। ध्यान से देखेंगे तो इजी है। कितने पिक्चर्स है इसमें, छह पिक्चर, तो छह कीवर्ड्स निकालने हैं आपको। किसका छह हो गया, पहुंचा है। टोटल 6 है। हो गया 6। हाँ मैंने बोला था बीटा है, 2025 से शुरू। तो हो गया ना सभी का। तो फर्स्ट पिक्चर में ये ग्रुप ए है, ठीक है। ये क्या है ये पिक्चर? पावर हाउस। तो पावर हाउस के लिए बाबा ने क्या कहा, एक्सप्लेन भी करना है, फैलाना है प्रकाश। सेकंड पिक्चर इधर नीचे वाले, सेकंड पिक्चर में क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम के लिए बाबा ने क्या कहा है मुरली में? हर सेवा केंद्र क्या होगा? म्यूजियम बन जाएगा, चैतन्य म्यूजियम। और थर्ड वाला सुशील भाई जी का ग्रुप, हाँ पुण्य के, उसमें क्या बोला बाबा ने? दान पुण्य करना, यहाँ से लेकर जाना और दान कर, दान करना बढ़ेगा। और फोर्थ वाला, नहीं फोर्थ वाला ये मधुबन के लिए बाबा ने क्या कहा? नहीं पावर हाउस तो है ही, श्रृंगार है, रौनक है। फिर ये फिफ्थ वाला कौड़ी से रितुल बाबा ने क्या कहा, एक्सप्लेन करे। हाँ और लास्ट पीछे वाले ऑडियंस गुलदस्ता, गुलदस्ता बाबा ने क्या कहा? सभी एक्विशन वालों को क्या करना है, वेराइटी सेवा केंद्र में लेके आना है। 7 नहीं है, 6 है। 7 नहीं है, 6 है। 7 मार्क कर दिया आपने। हाँ वो एक मैं बाय मिस वो करने के लिए कंफ्यूज। ठीक है तो अभी दूसरी एक्टिविटी है, तो अभी क्या है ना, मधुबन पावर हाउस बोला है ना, तो हाँ जी हाँ है, मधुबन पावर हाउस है। तो अभी जैसे हमने एक्टिविटी के लिए जैसे एग्जांपल के लिए बीच में पावर हाउस डाला है, अभी लाइट्स ऑफ करने पर इसमें पावर आएगा है ना। उसके बाद ये विश्व का ग्लोब है, ठीक है। और भी क्या बोला है बाबा ने कि बहुत सारे स्थान है जहाँ रहे हुए हैं, है ना, कोने कोने पे देश भी बचे हुए हैं, है ना, गली गली घर घर बचे हैं। तो आप इमेजिन करेंगे कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा देश है। और तो ये विश्व के ग्लोब में जैसे क्या पावर हाउस से क्या हो रहा है, कनेक्शन दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो वो करना है फर्स्ट। तो थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ कर देंगे, 1 मिनट के लिए साइलेंस। हाँ साइलेंस रहेंगे, साइलेंस में पावर जैसे अंधकार छाई हुई है विश्व में और कैसे पावर हाउस आती है अभी। तो ये पावर हाउस है, तो जैसे ये विश्व का ग्लोब। तो अभी म्यूजिक बजेगा, तो आप विजुलाइज करेंगे कौन से ऐसे स्थान है जहां बाबा का ज्ञान लाइट नहीं पहुंची है। और आप देखे दिल से सोचे कि कैसे अंधकार में प्यासी भटकी हुई आत्माएं हैं जो उनको बाबा का ज्ञान लाइट प्रकाश नहीं पहुंची है। तो उनको इस लाइट अपने लाइट से उनको भरपूर करेंगे अभी। ऐसे कर लेंगे। और किरणें देंगे लाइट। फिर से ऊर्जा भरेंगे। सारी शक्तियां लाइट्स विश्व में जा रही हैं, हर स्थान पर, हर घर पर, हर गलियों पर, हर एक आत्माओं में लाइट की कनेक्शन जा रही है। एक बार और मनसा सेवा करेंगे, अभी दूसरा बाबा ने कहा कि ज्ञान का जल हर आत्माओं में, तो पहले अव्यक्त वाणी जिसके पास है वो उठाएंगे, लाइट्स ऑन कर देंगे। ज्ञान की जल भी सभी, जैसे क्या ज्ञान गंगा सभी में भरपूर करना है, तो जैसे पहले दिल में लगाएंगे अव्यक्त वाणी और अव्यक्त वाणी को सलामी देंगे, तो ये ज्ञान अमृत जो वाणी है बाबा की सभी को मिल जाए, तो इसलिए ज्ञान जल देंगे ऐसे अनुभव कर खोल के, पूरे विश्व में ज्ञान जल जा रहा है ऐसे नहीं नीचे। अच्छा ओम शांति।
कौन से मैंने किया? तो ये जुलाई वैंस की ट्रॉफी है गायत्री बहन की, ये निकालो इसको। जुलाई वैंस में कौन सा था?
जुलाई मतलब क्रांति कौन सी है?
कौन सी? ज्योतिर्मयी। गायत्री बहन हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, वैसे नेपाल से है परंतु इंदौर हॉस्टल में थे, तो इंदौर हॉस्टल से निकली हुई कुमारी।
ओम शांति। वैसे तो जुलाई की ट्रॉफी है, तो रवनीश भाई को पूछते रहते कब ट्रॉफी मिलेगी। वैसे तो ट्रॉफी लेना नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भट्टी में मई में आई थी, जब ये धवल क्रांति था, तो ट्रॉफी का ज्यादा शौक तो लौकिक मदर को था, मम्मी को, कि ट्रॉफी कब मिलेगी, ट्रॉफी कब मिलेगी। मम्मी आई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा था कि ट्रॉफी मम्मी के सामने मिले तो उनको ज्यादा खुशी होगी आज। तो मई महीने में धवल क्रांति में बहुत अच्छे से किया था, तो ट्रॉफी मिलनी थी, लेकिन मेरे को था कि नहीं लेना है ट्रॉफी, क्यों लेना, पुरुषार्थ करना है ऐसा। तो एक बार भाई जी ने कहा था कि सबका नाम लेके कहा था कि सबको ट्रॉफी लेनी है ऐसा करके, फिर दिल में लग गया कि नहीं मधुबन निवासी को भी लेनी है ट्रॉफी। तो ज्योतिर्मय क्रांति से कि बहुत सारे पुरुषार्थ, अव्यक्तवाणी तो पढ़ते हैं हर रोज, शॉर्टकट में बताऊंगी, टाइम नहीं है। अव्यक्तवाणी पढ़ने से सबसे ज्यादा ये है कि समर्पण भाव आया पढ़ने से, और दूसरा जिगरी लव बाबा से, प्यार, इतना प्यार की बात मुझ पूछो, मतलब जो बाबा से एक्चुअल प्यार क्या होता है वो ये हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे हम अव्यक्तवाणी पढ़ते हैं तो कुछ भी, मतलब एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प जाता नहीं है, मतलब अभी जैसे सब कुछ टाइम सफल हो रहा है सेवा में, चाहे ज्ञान में चाहे योग में, और बाबा से एकदम अटूट कनेक्शन हो गया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, लव तो बाबा से होता है, लेकिन जिगरी लव होना चाहिए, वो बाबा से हो गया है। और दूसरी बात, प्रकृति से प्यार, मेरे को इतना प्यार नहीं था, तो ये जुलाई की भट्टी से मुझे, अभी तो हर जगह पेड़ देखती हूँ तो गले लगा के फोटो खींच लेती हूँ, मतलब इतना प्यार हो गया है। और मम्मी को ज्यादा आकर्षित यहाँ पहाड़ों से होता है मधुबन की, क्योंकि यहाँ हम नेपाल छोड़ के आए हैं कि जीना है मरना है तो मधुबन में ही। तो मम्मी बोलती देखो ये पहाड़े कितनी मजा मुझे भाती है, खुश होती थी मम्मी। तो मुझे कुछ भी नहीं लगता था ये प्रकृति से, लेकिन भट्टी की थी प्रकृति से इतना प्यार हुआ कि हर जगह पहाड़ों के साथ इतना इंजॉय करते हुए फोटो ले लेते हैं, ऐसा खुशी मिलती है ऐसा। तो सब कुछ अच्छा है। ओम शांति।
किसने बनाया ये? आ जाओ आप भी। तो ये चित्र बनाया है और क्या है ये भी बता देना। क्या लिखा है? मास्टर मुरलीधर। तो सागर वो नहीं जिसमें पानी हो, सागर वो है जिसमें अव्यक्त वाणी हो। अव्यक्त पानी।
ओम शांति। ओम शांति। हम दिल्ली खानपुर सेंटर से हैं, शरीर का नाम बी के उज्ज्वल बहन है, और ये हमने भाई जी के लिए बनाया था। थोड़ा सा आर्ट का शौक है तो हमें लगा कि भाई जी के लिए बनाए, लेकिन उसमें क्या बनाए क्या दे, तो हमें एक दिन ये दिखा तो हमने सोचा कि, लेकिन क्या स्लोगन लिखे वो समझ नहीं आ रहा था। पहले लगा कि विघ्न विनाशक का लिखते हैं, क्योंकि सभी के लिए भाई जी ने ये भट्टी जो आरंभ किया उससे हम सभी के बहुत सारे विघ्न समाप्त हो गए हैं। नहीं बड़े नहीं है, बहुत सारे विघ्न हट गए हैं। तो लेकिन फिर बाद में लगा कि बाबा ने उनको मास्टर मुरलीधर बनाकर हम सबकी जो भी विघ्न है वो भी हरे हैं। तो फिर बाद में हमने ये लिखा और भाई जी के लिए बनाया। मेरा एक्चुअली हम अभी लास्ट 3 ईयर से सेंटर पर है, तो सेंटर पर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसे हमें ताकत मिली है, उसे बाहर आए हैं। और भाई जी हमेशा बोलते हैं कि किस तरीके से हम, कोई भी एक शब्द हमारे लिए काफ़ी होता है। तो मेरे लिए एक शब्द बहुत कि सब कुछ अनित्य है, और एक इस शब्द ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। और कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं बार बार वही रिपीट करते रहती हूँ अपने अंदर में, और मैं उस चीज़ से ओवरकम कर पाती हूँ। तो थैंक यू भाई जी, थैंक यू एंजल ऑफ शिवा टीम। ओम शांति।
ये जो जनरेशन की बात चल रही थी, ये पूरा लिस्ट भेज दिया है किसी ने। पहले 1925 से 45 तक बिल्डर्स, फिर 46 से 64 तक बूमर्स, फिर 65 से 79 तक जनरेशन एक्स, फिर 80 से 94 तक वाई, फिर 95 से 2009 तक जनरेशन एक्स, फिर 2010 से 2024 तक जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा वाला कौन है? इधर एक ही है। अच्छा दो है। 2010 से 2024 के बीच जन्मे हुए दो लोग है इधर। और 2025 के बाद जन्मा हुआ कौन है क्या इधर? जनरेशन बीटा वाला कोई है? अभी अभी जन्म लिया है जिसने ज्ञान में। ओम शांति।
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे,
सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।
शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति।
ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी,
ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याण।
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम।
हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आदि में खामोशी तुम।
शिव शक्ति तपस्विनी,
सप्तरंगी राजेश्वरी शिव
शिव शक्ति